लेकिन अब आप तो पाकिस्तान में ही, लेकिन बाहर से रहने वालों से मैं पूछूं कितने साल हुए बेटी को मिले। आज सुबह भी किसी की माँ मिली थी तो कह रही थी मैं 7 साल से अपनी बेटी से नहीं मिली। तो जब अपने इतने साल बाद अपने प्यारों को मिलना होता है ना, तो दिल में एक खुशी, एक सुरूर होता है कि मैं मिलना चाहती हूँ, मैं उनको कैसे मिलूंगी, कैसे देखूंगी। बिल्कुल इसी तरह आपको अपनी मौत का सोचकर सुरूर आए। अल्लाह मैं आपसे उदास हूँ, अल्लाह ताला मैं नबी सल्लम को देखना चाहती हूँ। फिर आपके अपने प्यारे बाप दादा नाना कई चले गए ना, हाय कितने साल से नहीं मिले, अब मैंने इनको मिलना है। अक्सर आप अपने घरों में इर्द गिर्द सुनते होंगे कि मौत से कुछ दिन पहले लोग बातें शुरू हो जाते हैं, अम्मा आई थी, नानी आई थी, कहते हैं ना लोग, कोई कहता है मैं आपको लेने आया हूँ। वो रूहों के कुछ ना कुछ मामले चल रहे होते हैं। जब मौत आएगी ना, आपको पता है हमने अल्लाह को क्या देना है? एक बड़ा प्यारा उर्दू का शेर भी है कि जहाँ दी दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह सुबहान तआला ने आपको मुझे जो दुनिया में भेजा है ना, वो हमारी रूह थी। और आप अपनी रूह को आप एक एग्जाम्पल से समझें। मेरा ख्याल है कि ये जो मिसाल मैं आपको देने लगी हूँ, अगर आपने पहले कभी नहीं सुनी तो आज के बाद आपका बिल्कुल परसेप्शन चेंज हो जाएगा। मिसाल पहले दे देती होती हूँ, उससे बात समझनी आसान होती। आपको एक बड़ी खूबसूरत सी डिबिया एक बड़े खूबसूरत से गिफ्ट बैग में रखी हुई मिलती है, ब्यूटीफुली रैप्ड। जी ये गिफ्ट है। पहले तो आप इंतज़ार कर रहे थे कि कोई शादी में आया तो गिफ्ट दे, फिर दे तो आप कहते हैं क्या ज़रूरत है, और साथ पकड़ भी लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, लिफाफा दे रहे, नहीं क्या ज़रूरत थी, भी नहीं थी तो फिर मैं वापस ले जाती हूँ, नहीं चले अब ले ही आए हैं तो फिर दिल क्या तोड़ना है ना। झूठ बोलते हैं हम तो, हम दिन में कई बार झूठ बोलते हैं, झूठे तकल्लुफ करते हैं। घर से सोच के गए होते हैं कि खाएंगे पिएंगे ये खाएंगे, और जब कोई खिलाए तो कहते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं थी खाने की। खैर ये तो एक हल्की सी बात है। किसी को कोई गिफ्ट मिलता है बड़ा प्यारा लगता है, आप कहते हैं क्या खूबसूरत, मैं तो नहीं इसको खोलूंगी, इतनी अच्छी तरह से पैक हुआ हुआ है, लेकिन कितना कुछ सब्र करेंगे आप। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बैग खुलता है, उसमें बड़ी और चीज़ों के अंदर से एक बॉक्स है, फिर उसकी रैप्स खुलती हैं, रिबन खोला, ये सजाते रखते, अंदर से खूबसूरत सी वेलवेट की डब्बी, और फिर उस वेलवेट की डब्बी को खोलने की देर है, और उसमें से क्या निकला, एक रिंग। जिसने इतना इहतमाम किया ना, उसने असल में आपको ये रिंग देनी थी, और इस रिंग के लिए उसने इतने पर्दे डाल दिए, पर्दे डाल दिए। अब जो ही आपने ये रिंग देखी आप क्या करेंगे, ओह अच्छा हुआ, अब वो तो गई उंगली में, डब्बी थोड़ी देर तो रखेंगे, फिर लिफाफा गया, फिर चंद दिन के बाद हो सकता है सफाई करें, सब फेंक दें, और असल आपके हाथ में ये रिंग आ गई। अब इस मिसाल को समझिए, हम सारी जिंदगी जिसको कहते हैं ना मैं, आई एम, मेरी जान, मेरा नफ्स, जैसे मैं अपना नाम लूँ आप अपना लें, मेरी चॉइस, मुझे ये अच्छा लगता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये जो मुझे का लफ्ज़ है ना, ये नफ्स है। अल्लाह ताला ने असल में आपकी मेरी रूह बनाई थी, उस रूह को इस जिस्म का रैपिंग पेपर डाल दिया। ये जो इस वक्त आपको मेरा किसी हद तक और मुझे आपका किसी हद तक चेहरा मोहरा दिख रहा है ना, कद काठ दिखता है, हमें अपने रंग दिखते हैं, हाथों का रंग दिखता है, फेस कलर दिख जाता है, ये रैपिंग पेपर है। चूंकि अब सब यहाँ हम एक ही जैसे हैं, तो हम ब्रिटिश हैं, हज पे जाइए, ब्लैक मुस्लिम, अफ्रीकी, हफ्सा से आए हुए, सीरिया से आई हुई गोरी चमकती हुई औरतें, फर्क होते हैं ना। हम अमूमन जाहरी शक्लो सूरत पे हैं, लेकिन इस जाहरी शक्लो सूरत की हैसियत उस रैपिंग पेपर की है जो किसी गिफ्ट बॉक्स के ऊपर रैप किया जाता है। मौत की सूरत में फरिश्ता क्या करता है, हमारे रैप खोलता है, वन नाजियाती गरका वन नाशिताती नश्ता। नेक बंदे की रूह बड़े प्यार से खोली जाती है, जैसे खुशबू की शीशी खुली रही, खुशबू उड़ गई, पीछे खाली बोतल रह गई। और इसी तरह से फाजिर की मौत बड़ी सख्त है, सुना होगा अपने हदीसों में कितना कठिन वक्त होता है। लेकिन इस वक्त आप समझिए कि ये जो जिस्म हमारा है और ये रैपिंग पेपर है, किसी को सफ़ेद लगा दिया, किसी को ब्राउन, किसी को काला, किसी को पिंपल्स वाला, किसी के चेहरे पे बाल हैं, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, डजंट मैटर, ये सारे रैपिंग पेपर उतर जाने हैं। मौत की सूरत में अल्लाह ने हमारी रूह का मोती उठा के अपने पास ले जाना है। सूरत फजर की आखिरी आयतों में क्या पैगाम है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जीला रब्बी की राधियतम मर्दिया, ए नफ्से मुतमईना। अब यहाँ लफ्ज नफ्स को जहन में बाद में रखिएगा, मैं आपको याद दिलाती हूँ। ए नफ्से मुतमईना इर्जी, कम बैक, लौटा किधर? इला रब्बी, अपने रब की तरफ। किस हालत में? राधियतम, राधिया तो राजी है, यानी यह नफ्स तो राजी है, ये मोनस नफ्स की वजह से आ रहा है। ए नफ्स तू राजी है अल्लाह से और मर्दी या वो तुझसे राजी है, ये बहुत बड़ा मुकाम है कि दोनों ही खुश हों, अल्लाह भी खुश तो बंदा भी खुश। ये मोमिन के दिल की कैफियत है तस्लीम और रजा की। अल्लाह ताला बंदे की रूह को उठाकर ऊपर ले जाता है, मोमिन की रूह के लिए आसमानों के दरवाजे खुलते जाते हैं, और कुफार और फुजार और तकबर करने वालों के लिए कुरान क्या कहता है सूरत अल आराफ में? ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समावात, के फाजिर की रूह को ले जाने के लिए या उसकी आखिरी जो घड़ी है उसमें आसमानों के दरवाजे नहीं खुलते, या दुआओं के लिए दरवाजे नहीं खुलते। तो अल्लाह ने आपसे मुझसे जो एंड ऑफ द गेम चीज एक्सेप्ट करनी है ना, वो हमारी रूह है, हमारा नफ्स है। चलिए अब इसको समझिएगा, हम सारी जिंदगी किसको सजाते रहे? हम सारी जिंदगी किसके लिए रुलते रहे? आप इस मार्केट से जब निकलेंगे ना, तो आपके बाहर मेन रोड पे दुकानें हैं ना, जिधर भी मुड़े, राइट मुड़ेंगे या लेफ्ट या सामने जाएं, आप जरा दुकानों के नाम पढ़ते जाइएगा। कोई होटल, ग्रोसरी स्टोर, कोई खाने की, कोई पीने की, कोई कपड़ों की, कोई जूतों की, कोई फर्नीचर की, कोई गद्दों की, और क्या क्या बिकता है? मोस्टली जो भी तस्वुर में आ सकता है उसको लाकर देखिए, ये किसकी खिदमत कर रहा है? इस जिस्म की, इस रैपिंग पेपर की, जिसको मौत की सूरत में उतार के बाद में कब्र में डंप कर दिया जाएगा। ये जो डेड बॉडी होती है ना, ये कुछ नहीं होता, ये पुतला है। जैसे कचरे को एंड पे दबा दिया जाता है ना, रूह ले गया अल्लाह, मोमिन गया अल्लाह के पास, वो मौजे मना रहा है। आप रोएं धोएं जो चीखे करे, वो कहते मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत खिदमत कर ली आपकी, अब अपने काम खुद करो। माँ भी चली जाती है, बाप भी चला जाता है, शौहर चले जाते हैं, अगर वो नेक है तो खुशियां मनाता है, मोमिन की रूह उछलती है, ऐसे उछल रही होती है खुशी से, जैसे किसी बच्चे को आप कहीं उसकी मनपसंद जगह पे ले जा रहे हैं। और हम उस रैपिंग पेपर में रो रो के जिंदगियां गुजारते थे। महंगाई का रोना जिस्म की मुसीबत है, बिजली पानी गैस पेट्रोल गाड़ी आईफोन सेलफोन फलां फोन, ये सारे रैपिंग पेपर की खिदमत कर रहे हैं। चूंकि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया था ना पुतला, तो मट्टी क्या है? मैटर। और आज आप और मैं अपनी तख्लीक को देखें, तो बच्चे की तख्लीक जिस मादे से होती है, वो भी जमीन की चीजों को खा के होती है ना। हमारी हर चीज जो हम खाते हैं या पीते हैं, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी बराह रास्त या गैर बराह रास्त ताल्लुक मट्टी से है। सब्जियां फल मट्टी से निकलते हैं। अब डेयरी आइटम्स हम तो नहीं मट्टी खाते, लेकिन वो गाय भैंस बकरी मट्टी से निकला हुआ चारा खाती है, उसके पेट से हमें डेयरी आइटम मिल जाता है। और क्या खाते हैं? गोश्त जानवरों से, और जानवरों ने भी जमीन से आई हुई चीज़ खाई ना। पता क्या चला कि आदम का वजूद चूंकि मट्टी से बना था और आज हमारा भी बनता है, तो हमारे जिस्म को हमेशा मट्टी और ये मैटर अट्रैक्ट करता है, दिल रीझता है, इसमें झुकते हैं हम। अखलद इलाल सूरत अल अराफ में अल्लाह ने एक बंदे की मिसाल दी है, जमीन की तरफ ही झुक गया, यलहस, जाल टपकती है। ये जो हर वक्त हम रोते हैं ना, मेरा कैरियर क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी डिग्री किधर गई, मैंने क्या पढ़ा, ये सब इस मादे की खिदमत है। और जब हम कामयाब होते हैं तो हम इसी की कामयाबी को कामयाबी कहते हैं। तो हमारा दिल इसमें गुजरता है। इसके बरक्स वो जो अंदर रूह है ना, जिसकी इस्लाह के लिए आज बैठे हुए, ये रूह ऊपर से आई है। अल्लाह ताला ने आदम के पुतले को बनाने के बाद क्या किया, फनफख्तु फीह मिन रूही, फिर मैंने फूकी, ब्लो की उसमें अपनी रूह। हमारी जो रूह है ना, ये आसमान से आई थी। अल्लाह ने आदम के अंदर जब जान डाली थी ना, तो वो रूह थी। और आज 4 माह के हमल के बाद बच्चे की जान या उसके अंदर रूह जो डाली जाती है माँ के पेट में कुछ हफ्ते के बाद, वो भी यही रूह होती है। ये आई है आसमान से। अब ये है वो क्लाइमेक्स, जिसको हम समझेंगे तो अगली बात आसान है। ये ऊपर से आई है और इसका दिल ऊपर लगता है। आप जिस भी मुल्क में चले जाएं, खाना आपको अपने ही मुल्क अच्छा लगता है। मैं आपको गवाही दूं, नॉर्वे में जलेबियां भी होती हैं, नॉर्वे में क्या बोलते हैं उसको, शक्कर पारे भी होते हैं, समोसे भी होते हैं, नमक पारे भी होते हैं। वहाँ आपकी सब्जियाँ, गोश्त, आलू, मटर सब होता है। गुड़ वाले चावल भी लोग वहाँ खाते हैं। और पूछ ले मुझसे, साग भी, रोटियाँ भी, मकई का आटा, लोग इधर से तंदूरियाँ ले जाते हैं छुपा छुपा के, वहाँ जाके तंदूर की रोटियाँ भी खाते हैं, क्योंकि दिल नहीं लगता वहाँ के खाने। आप एक दिन नॉर्वेजियन खाना बड़े चाचविंदे से खा लेना, दूसरे दिन नहीं दिल करता। हमारा दिल अपने खानों में लगता है, ऐसे ही है ना। जिस तरह हर बंदे को अपने मदरलैंड और अपने होम टाउन का खाना पीना अच्छा लगता है ना, इस तरह हमारी रूह आसमान से आई है, तो इसको आसमान का खाना चाहिए। अब वो क्या, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतिल क़द्र, लैलतिल क़द्र खैरु मिन अल्फ शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा। आसमान से कुरान उतरा, आसमान से रूह उतरी। ये कुरान और ये रूह हम जो लिए हैं, सहेली हैं, एक गांव की दो ग्राही हैं। आप मुल्तानी है ना, तो आप सारे जैसे मुल्तानी है ना, तो आसमान से हमारी रूहें और कुरान आसमानी है। जब दोनों का होम लैंड एक है ना, तो दोनों को चीज़ें भी एक ही अच्छी लगती हैं। जो हमारे जिस्म की कैफियत अपना खाना खाकर होती है ना, देखिए खाना खाने के बाद नींद आती है, सुकून, सुस्ती, रिलैक्सेशन, सेम यही कैफियत कुरान की महफिल में हमारी रूह की होती है। इसको कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब। इसको अल्लाह ताला कहते हैं कि जब लोग अल्लाह की जिक्र की महफिल में होते हैं, तो तनज़्ज़लत अलैहिमुस्सकीना, और कुछ फरिश्ते हैं जिनको सायहून कहते हैं, जो घूमते फिरते हैं और ऐसी मजलिसों को आकर सकीनत से ढांप लेते हैं। ये तो एक लेक्चर हो रहा है ना, ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ हम नहीं कर रहे इस वक्त। जब तफसीर और कुरान खुलता है, तो उस वक्त ऐसे लगता है कि यहाँ फरिश्तों ने ढांपा हुआ, जैसे वो सूरत कहफ पढ़ने पे सहाबी रसूल का घर फरिश्तों से भर गया था। ये कुरान हमारी रूह की गजा है, मौसीकी नहीं, कुरान रूह की गजा है। और आप जरा सा हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, कितने ना समझ हैं। अब वही अंगूठी वाली मिसाल लीजिए, आप डब्बी भी लें, लिफाफा भी लें, रैपिंग पेपर भी लें, रिबन भी लें, फिर उसको 100-200 रुपए देकर पैकिंग भी करें, ये सारे लिल्ले तलिल्ले मैं तो इनको कहती हूँ, और अंदर रिंग अच्छी ना हो, अंदर की चीज खोटी तो बाहर की खरी, क्या फायदा। जिसको अपने देना उसने ये पहननी है। और हम डिस्प्ले कैसे देते हैं, ये शादियों पे देखा करें, बरी, जहेज, सालगिरह, टोपियाँ, कुर्ते, ईदी आ गई, बिद आ गई, इसी हॉल की दीवारें गवाही देती होंगी ना, अक्सर के शादी वाले दिन लोग किस डिस्प्ले पे आ जाते हैं, सवा मन मिठाई, बिद ना आई तो नाराज़ हो जाएंगे लोग। हम सारी जिंदगी इस रूह को भूखा रखते हैं, कुरान नहीं आता, कम आता है, पढ़ते भी हैं तो समझ नहीं आता। मैं आप सब से नहीं पूछती, क्योंकि मेरा गुमान है आप सबको आता है, फिर भी मैं उन चंद लोगों के लिए पूछ लेती हूँ जो सकता है आपकी किसी भी कुरान क्लास से ना जुड़े हों। जब तिलावत सुनते हैं आप, तो किस किस को कुरान समझ आता है? 25 से 30% लोगों के हाथ खड़े, तो बाकी 75 या उसके कमोबेश, क्या आपका दिल नहीं करता? क्या आपको फातिहा से नाज तक कुरान समझ आए? आपकी क्या मसरूफियत है जिसने आज तक आपको कुरान का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा पढ़ने से रोका हुआ? क्या मजबूरी है आपकी? सॉरी, कौन सी रुकावट है? क्या मसला है आपके घरों में? आप क्यों महरूम हैं? आपका दिल नहीं करता? आपका हक नहीं है? देखिए, जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात ना समझ आए, उसकी जुबान ना आती हो, तो बात कैसे होगी? वो कहते हैं ना कि मेरा दोस्त तुर्की, और तुर्की जुबान मुझे आती नहीं। ये अभी जो नमाज पढ़ के आए हैं जोहर की, असर की, क्या बातें की रब से? किस किस को नमाज का तर्जमा समझ आता है? बगैर कापियों को खोले और नमाज मुतरजम, और लोग उसको मुतरजम पता नहीं क्या कहते हैं। तो आपने तो फीकी चाय पी है फिर। जिसको नमाज पढ़ते वक्त नमाज नहीं समझ आती, जो सूरतें आप उसमें पढ़ते हैं नहीं समझ आ रहा कि कह क्या रहे हैं, अत्तहियातु लिल्लाही का मतलब नहीं समझ आता, समय अल्लाहु लिमन हमिदा हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी का मतलब समझ नहीं आता, तो उसने क्या नमाज पढ़ी? फिर नमाज में दिल नहीं लगेगा। जिसने रमजान में 4 कुरान पूरे किए और 4 दफा सूरत नूर पढ़ी, 4 दफा सूरत मरियम पढ़ी, 4 दफा जिसने सूरह कहफ पढ़ी और 1 दफा भी नहीं रुका, किसी एक आयत ने उसके पांव नहीं पकड़े कि रुक पहले फिर आगे जाना, उसने क्या पढ़ा? और ये भी कोई नहीं पता कि जो कुरान 4 दफा पढ़ा है वो ठीक भी पढ़ा है कि नहीं। काफ और काफ का फर्क नहीं पता, सीन और स्वाद का फर्क नहीं पता, सा और सा का फर्क नहीं पता, आयन और हमजा का फर्क नहीं पता। क्या कर रहे हैं हम लोग? कहते हैं ना कि घटिया, क्या खोया और क्या पाया? अपनी उम्र में से 10 माइनस करके अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके पूछे, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया? मैंने एक किताब अल्लाह ने जो भेजी वो भी नहीं सही समझी। ये जो नफ्स है ना, ये है रुकावट। बच्चे रुकावट नहीं, शौहर रुकावट नहीं, गुर्बत रुकावट नहीं, अमीरी रुकावट नहीं, रुकावट नफ्स है। जो हो ज़ौके यकीन पैदा, तो कट जाती हैं जंजीरें। हमारे अभी ज़ौके यकीन पैदा नहीं हुआ। और 3 जिदें तो बड़ी मशहूर है ना, जिसमें से एक क्या है? जन हट, औरत की जिद। औरत जब जिद लगा रहती है ना किसी चीज पे लेके रहती है, तो हमें तो नहीं कोई रोक सकता, शौहर नहीं रोक सकते, वरना तो हजरत आसिया के शौहर से जालिम किसका शौहर था? माँ बाप नहीं रोक सकते, वरना तो आजर की मिसाल मौजूद है। माँ बच्चे बीवी नहीं रोक सकते, वरना तो हजरत नूह 950 साल तबलीग करते ही ना। ये मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन ना सका, और शैतान हमारे नफ्स को हमेशा काबू में रखता है, पूरी जिंदगी मसरूफ रखता है ताकि हम अपनी जिंदगी का असल काम ना कर सकें, और यूं पलक झपकने में हमारी मोहलत हयात खत्म हो जाएगी, हो रही है, हो जाएगी और हो जा रही है। कितने जनाजे उठाए, कितनों को नहलाया, कितनों को कफनाया, 4 लोगों के कंधे पर डालकर लोग ले जाएंगे हमें भी, लेकिन हमें वक्त नहीं मिलेगा, वक्त ही नहीं है। बच्चों के पास भी वक्त नहीं, बूढ़ों के पास वक्त नहीं, जो उठ के पानी नहीं पीते, टाइम ही नहीं मिलता। बच्चे मसरूफ, औरतें मसरूफ, 6-6 मासियां, हेल्पर्स, लड़कियां घरों में, फिर टाइम नहीं मिलता। लड़कियों के पास टाइम नहीं, लड़कों के पास टाइम नहीं, मर्दों के पास तो बिल्कुल ही नहीं। वजह क्या? कि शैतान ने हमारे नफ्स को जकड़ा हुआ है। अब देखिए कि एक बग्घी जहन में लाए ना, बग्घी यानी होती कराची में होती है, फिर भी 2 घोड़े लगे होते हैं उसके सामने, वो सीधी चलती है। आप तस्वीर में लाए कि एक बग्घी है तो उसके सामने एक सफेद घोड़ा है और एक काला है। सफेद घोड़े के पर हैं, वो ऊपर उड़ना चाहता है, और जो स्याह घोड़ा है ना वो जमीन में धंसना चाहता है। अब वो दोनों होंगे ना सीधे सीधे तो बग्घी सीधी चलेगी ना, वो उड़ना चाहता है ये झुकना चाहता है, बिलाखिर दोनों जमीन पर रहेंगे। इसके बरक्स अगर आप काले घोड़े को उतार दें तो वो सफेद घोड़ा कहेगा ऊपर उड़ो, या सफेद को उतार दें तो काला कहेगा नीचे जाओ। कि जो हमारा नफ्स है ना, इसको ये दो लगामें लगानी पड़ती हैं। ये जो रूह है ना, ये चाहती है बस कुछ ना करो, ना खाओ ना पियो, ना दुनिया के काम, ना जिम्मेदारियां, अल्लाह अल्लाह, जंगलों में निकल जाओ। रहबानियत का तसव्वुर इसी से आया कि दुनिया में बिल्कुल कुछ नहीं करना। और ये जो काला घोड़ा है ना, ये कहता है बस दुनिया 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 दुनिया, अल्हाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये हमें हर वक्त नफ्स के, अभी नाश्ता, अभी खाना, अभी ये, अभी वो, अभी ये, सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता। अक्लमंद कौन है जो सफेद और काले घोड़े को बैलेंस में रखे? हम सबको अपनी फिक्र करनी चाहिए। हमारी दुनिया और आखिरत की असल कामयाबी इस्लाह नफ्स में। अब आखिरी हिस्सा शुरू करती हूँ आज की गुफ्तगू का, कि इस्लाह नफ्स है क्या, किसको कहते हैं? तो लिख लें या सुन लें गौर करके। नफ्स की तरबियत मुख्तलिफ मराहिल में जाके करना, यानी नफ्स की इस्लाह ऐसे जैसे एक बर्तन है वो गंदा हो चुका है। आमतौर पे आप पानी फेर ले तो साफ हो जाता है, ग्लास बस पानी पिया तो साफ हो गए, प्लास्टिक की टोकरियां, सब्जी काटी थी, जो भी डाला, बस आपने पानी डाला तो साफ। कुछ बर्तन होते हैं वो खाली पानी से साफ नहीं होते, उसको साबुन लगाना पड़ता है। कोई भी सोप है आपके घर में, आप लगाते हैं, आपके चम्मच और खाने की प्लेटें साफ हो जाती हैं। लेकिन तीसरे मरहले पे कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनमें खाना पका है, डोंगे, पतीलियां और जो कुछ भी होते हैं, प्रेशर कुकर। अब उसको ना तो पानी से बल्कि साबुन, बल्कि कुछ ना कुछ उसमें वो जूना या कोई स्टील वूल कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, फिर साफ होंगे। अब बिल फर्ज खाना जल गया, कुकर में नीचे खाना लग गया, अब वो कुकर कैसे साफ होगा बताइए? उसको रगड़ना पड़ता है। बस आप खुद देखेंगे, इस वक्त भी आप 4 रोज में ही मुझे दिख रहे हैं, सिर्फ इमेजिनेट करवाने के लिए। नफ्स की इस्लाह ऐसे ही है जैसे गंदे बर्तन को धोना। कुछ लोग फितरी तौर पे नेक होते हैं, तो फैल दौसी थे, इसी तरह और भी नाम मिलते हैं हमें तारीख में, कि दौरे जाहिलियत में भी कभी गैर अल्लाह का जबीहा नहीं खाया, अल्लाह के नबी ने उनको जन्नती करार दिया। अगर तो बचपन से लेके जवानी और अब तक के वक्त में बड़ा नेक पाक साफ माहौल था, दिल ही नहीं किया गुनाह करने को, तो बस तौबा का पानी ही आपको धो देगा इंशाल्लाह। दूसरी तरह के लोग ऐसे हो सकते हैं कि खलतु अमलन सालिहन, गुले मिले, खिचड़ी पकी हुई है, नेक काम भी करते हैं, गुनाह भी नहीं छूटते, मस्जिदें भी अच्छी लगती हैं, तो आप कह लीजिए कि कुछ और भी अच्छा लगता है, नाम नहीं लेना चाह रही। मस्जिद के मुकाबले में बाजार का नाम लिया अल्लाह के नबी ने, अब उनको ज़रा और धुलाई करनी पड़ेगी, और कुछ मकरूहात में पड़ गए, शुबे की चीज़ों में, उनकी धुलाई फिर और होगी। और अल्लाह ना करे जो चौथी कैफियत है, जिसमें लोग हराम में पड़ गए, शराब, जिना, बदकारी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें नफ्स गुनाहगार हो गया, आलूदा हो गया, उसकी इसलाह और मुश्किल है। तो आज मैं आपको 4 असूल देके जाने वाली हूँ इंशाल्लाह, 4 तरीके कह लें, यानी इसलाह नफ्स क्या है, मुख्तलिफ तरबियती तरीकों से गुजरने का नाम, जिनसे फायदा उठाकर कोई भी मुसलमान अपनी जात को इल्मी, ईमानी, अखलाकी और समाजी, 4 मैदान याद रखिएगा, इल्म का मैदान, ईमान का मामला, अखलाकियात और सोशल लाइफ, इधर से एक इस्लामी शख्सियत बनता है। आसान जुमला बोलूँ, एक अच्छा मुसलमान बनने के रास्ते के जितने मरहले हैं, इसको इस्लाह नफ्स कहते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लम ने बहुत प्यारी बात कही, तिर्मिजी की रिवायत है 2459, आपने फरमाया कि अक्लमंद वो है। पहले आप सोचे कौन होगा भला, हमारे जहन में तो बहुत कुछ आ चुका होगा जी। आप क्या कहते हैं जी? हमारे यहाँ तो अकलमंदी का मेयार कुछ और है ना, जो 2 जमा 2 नहीं बल्कि 2 और 2 को 22 कर ले। आपने फरमाया कि अकलमंद वो है जो अपने नफ्स को राम कर ले, टेम, और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे। और आजिज वो बेवकूफ है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात पर लगा दे और रहमत इलाही की आरजू करे। मैं 10 सेकंड खामोश रहूं अगर, और आप इस पे गौर करें ना, तो आपको इतना तो अंदाजा हो जाएगा कि हमारे इर्द गिर्द अक्लमंद लोग ज्यादा हैं या आजिज। हमें से कितने लोग हैं जो मौत के बाद की जिंदगी के लिए ज्यादा मुतफक्किर हैं इस जिंदगी की निस्बत, और कितने हैं जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे लगा रहे हैं और उम्मीद रहमत इलाही की कर रहे हैं। तो अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में इस्लाह नफ्स के 4 बुनियादी नुक्ते मैं ऐसे ऐसा बोलूँगी ताकि आप में से जिसको नया लगे या जो लिखना चाहे, या बाद में लिखेंगे लोग तो आप बाद में भी सुन के लिख लीजिएगा, अभी नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला असूल, 4 फंडामेंटल्स आपके मेरे अपने नफ्स की इस्लाह के क्या हैं, उसको कहते हैं मुशारता। लफ्ज शर्त जहन में लाइए, शर्त शीन रा तौतन, तो पहले को कहते हैं मुशारता, अपने नफ्स के साथ शर्त लगाना। किस बात की? कि ये गुनाह नहीं करूंगी, आज से शर्त लगाइए। मैं सबकी डिटेल बाद में देती हूँ आपको, पहले लिख लें। पहला असूल मुशारता, शर्त लगाकर गुनाह से रुकिए। दूसरा असूल है, इसको कहते हैं मुराकिबा, रकीबा, गर्दन को कहते हैं ना, फक्कु रकबा, राकाफबा, वही लफ्ज है ये। मुराकबा क्या है? दिन भर अपनी निगरानी रखना। अल्लाह ताला का एक नाम याद आ रहा है इससे, अर रकीब। और हमारी शायरी में रकीब किसको कहते हैं? लोग रकीब को रकीब कहते हैं, दुश्मन को, क्योंकि दुश्मन की नज़र आपकी गर्दन पे होती है कि जब मौका मिले आपको ज़िबा कर दे। मुराकबा क्या है इस्लाह नफ्स में? दिन भर अपनी निगरानी में रहे कि कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, मैंने गुनाह नहीं करना। तीसरा सूर लिखिए मुहासिबा, हसीबा यखसुबु से है मुहासिबा, हिसाब किताब, जिसमें इंसान हमेशा अपने ऊपर नज़र लगा के रखता है, मुहासिबा। रात को सोने से पहले तन्हाई में दिन भर के कामों का जायजा लें, गोया कि अपना हिसाब लें, अकाउंट चेक करें, खाता क्लोज करना, जो काम करते कराते हैं जो ऐसे चीज़ें उनको पता है ना कि कैसे ये मुश्किल काम होता है, सारे दिन की रोकड़ जोड़ना, इनकम और एक्सपेंसेस को बराबर करना, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, कितने गुनाह किए कितनी नेकियां की, इसको मुहासबा कहते हैं। जो गलत हुआ उस पर शर्मिंदगी के साथ इस्तगफार किया जाए, जो अच्छा हुआ उस पर अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा किया जाए, ठीक है। जितना जो गलत हुआ उसके बारे में इंसान सोचों में पड़ जाए। चौथा असूल इसके आगे का मरहला वो है मुआखिज़ा। उर्दू में कहते हैं आपका मुआखिज़ा होगा, वो वा नहीं होता, हमज़ा होती है, मुआखिज़ा। मुआखिज़ा क्या होता है? कि नफ्स ने दिन भर जो नाफरमानियाँ की, इसकी सज़ा खुद दीजिए अपने आप को। और वो सज़ा क्या है? कि अपने नफ्स पर इबादत का बोझ डालें। और हमारे इस्लाफ ऐसा करते थे, एक फजर छुटती थी ना तो इतना रोते थे, फजर नहीं छुटती थी, जमात छुटती थी फजर की, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि शैतान उनको अगले दिन आके फजर में उठाने लग जाता था कि अल्लाह के बंदे उठ नमाज पढ़। क्यों भाई, तू कौन है शैतान, क्यों आया? क्योंकि तू इतना रोया है कि मुझे डर पड़ा कि अल्लाह तुझे नमाज पढ़ने से ज्यादा ही ना डर देते, तो तेरी अगर आज भी छुट गई तो तूने मुझे ये करना है। तो ये हैं इस्लाह नफ्स के चार असूल। अब ज़रा से इस पर हम अपनी मज़ीद थोड़ी सी बात करके सोचें। पहली बात देखिए कि क्या हमें इतनी फिक्र है अपनी, क्या मैं चाहती हूँ कि मेरा नफ्स साफ हो, मेरा नफ्स पाक हो। है तो खुशकिस्मत है आप, बहुत लोगों को आता है। सूरत मोमिनून में अल्लाह ने कुछ लोगों का तذکرہ किया और उसमें फरमाया कि वो अपने रब से डरते रहते हैं और उससे रोते हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा था अल्लाह के नबी, ये कौन लोग हैं? ये गुनाहगार लोग हैं, गुनाह करते हैं फिर रोते हैं। यानी जैसे अपनी ज़ुबान में आप कहें कि चोरी चकारी हो गई और ये वो, तो आपने फरमाया कि सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा, यानी आपको आपके बाप की नस्बत से बुलाते थे। फरमाया कि नहीं, इससे मुराद गुनाह करके गुनाहों पर रोने वाले लोग नहीं, नेकियां करके इस बात पर रोने वाले हैं कि पता नहीं अल्लाह ने हमारी ये नेकियां कबूल भी की हैं कि नहीं। मुशफिकून के लफ्ज़। तो बात यही है कि कद अफलह मन ज़क्काहा, ये जो पहली चीज़ थी ना मुशारिता, इसकी थोड़ी सी मैं आपको चारों की प्रैक्टिकल स्टेप्स दो चार दे दूं ताकि आसान हो जाए बात। आप क्या करें और मैं क्या करूं? पहली बात यह है कि मैं आपसे ये कहूंगी कि अकेले में नहीं, खानदान फैमिली, घर में आप बच्चे में या जो भी घर के लोग हैं, फिर दोस्तों का सर्कल, फिर फ्रेंडशिप सर्कल्स होते हैं, कोई किटी पार्टी है, फिर ख़ानदानी सतह पे आजकल तो ग्रुप्स और बड़ा कुछ मौजूद है सोशल मीडिया पे, मिल के अपनी फ्रेंड्स के साथ ये काम करें। आओ हम एक दूसरे को पाक करें। चलो शर्त लगाते हैं, मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। लेट्स सी, मिसाल देती हूँ कि गीबत की बात करते हैं, हमारा फेवरेट काम है ना, और ये ऐसा काम है कि जिसको हम करके भी नहीं जान रहे होते कि ये गीबत है, कभी दुख सुख कर, कभी कुछ ना कुछ किसी नाम पे कर रहे होते हैं ना। आप एक सजा रख लें अपने लिए, अगर मेरी फजर की नमाज छुटी तो मैं रोज़ा रखूंगी और बगैर खाए का रखूंगी, अठ पहला रोज़ा। शर्त लगा लें, यानी मैंने नमाज को वक्त पे पढ़ना है, और किसी दिन छूट गई तो क्या करेंगे फिर आप? रखना पड़ेगा ना, एक ही रोज़ा रखेंगे अब, जी छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही है, बंदा वो कहते हैं ना मारे से डराया बेहतर होता है, नफ्स इतना डर जाएगा वो खुद ही उठ जाएगा कि रोज़ा रखना पड़ना है, उठो नमाज ही पढ़ ले। मुराकबा क्या, सारा दिन चेक करें गीबत की कि नहीं की, गीबत की कि नहीं, कितनी की, लिखिए काउंट कीजिए, कापियाँ बनाएं, जहाँ आप अपनी वो शॉपिंग लिस्टें बनाते हैं ना, सेव करते हैं ना, ये भी लेना है, वॉच लेटर, सेल आएगी तो बताना, पहले से नोटिफिकेशन, ये मुराकबा से में नोटिफिकेशन है। इधर आपने कोई गलत काम किया, जड़ से टिक करके आपका नफ्स कहेगा, नफ्स से लवामा, ये क्या किया तूने? और नफ्स की तीन कैफियात तो मैंने आज बोली भी नहीं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमईना। फितरतन नफ्स अम्मारा है, बुराई का हुक्म देता है, बहुत कमांडिंग नफ्स है हमारा। नफ्स लवामा एक फितरी कैफियत है कि जो ही गलत काम बंदा करता है उसके अंदर से एक टोक आती है कि ये क्या किया तूने, शर्म नहीं आती? और वो किसी की बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा कि असल इंजॉय नेक बंदा करता है। वो लफ्स मौलवी बोल रहे थे तो मैं उसको अवॉइड करते हुए बोलूं, असल में अपनी लाइफ को एक नेक बंदा, मोमिन बंदा इंजॉय करता है, क्योंकि उसकी इंजॉयमेंट हलाल चीज़ों में। देखिए ना, नफ्स को अच्छा लगता है खाना पीना मिलना पहनना ओढ़ना, तो अब एक नेक शख्स अच्छी महफिलों में मिलेगा ना। मिसाल देती हूँ कि आज आप सब मिल रहे हैं ना, अच्छे कपड़े भी पहने होंगे, कोई बुरी बात तो नहीं अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है ना, तो आपको मजा आ रहा है। इसके बरक्स वो कह रहे थे कि जब कोई गुनाह करता है उसमें भी सब कुछ करता है, लेकिन एंड पे वो जो अंदर नफ्स लवामा का अंदर से कचोका पड़ता है ना, वो सारी खुशी किरकिरी कर देता है, जैसे जैसे खाते हुए आखिरी लकमे में कोई पत्थर आ गया। गुनाह का गिल्ट बहुत बुरा होता है, मा हा कभी ही फी सदरक। तो दूसरी कैफियत समझ गए, मुराकबा, हर वक्त नजर रखें, आपस में बात कीजिए, कोड वर्ड रखिए दोस्तों में, मुर्दा भाई गोश्त, बस एक लफ्ज़ बोल दें, अब बात आप पता कहते हैं, आप अपनी रमा रमी में बोल रहे होते हैं और बेतकल्लफ दोस्तों में तो बहुत ही बोलते हैं, तो कोई एक बोल दे तो ये आप फिर रुक जाएंगे, करते करते रुक जाएंगे। मुहासबा क्या, रात को खोलें अपनी लिस्ट, आज कितनी हो गई, कितनी गिफ्तें की, क्यों की, किसकी की, अब इसका कफारा कैसे होगा। अच्छा आज मेरी नेकियां मेरी सास को मिल गई, कुछ नेकियां मेरी नंद को मिल गई, कुछ मेरी फुला, और जो बुरे लगते हैं हम अक्सर उन्हीं की कीमतें करते हैं और एंड पे सारी नेकियां उधर चली जानी है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की ना कि तूने अगर गीबत करनी है तो अपनी माँ की कर, क्योंकि तेरी नेकियों की हकदार तेरी माँ है। और फिर मुआखजा क्या है, मुहासबे के बाद मुआखजा क्या करें, गिन ली पांच हो गई आज कीमतें, करना क्या है। मैं इसी की मिसाल ही दे देती हूँ, कुरान की किरणें जो हमारा कोर्स है उसमें सूरह हुजरात की तफसीर चलती है, तो उसमें भी ये स्टेप्स दिए मैं, लेकिन उसका एक हिंट दे देती हूँ। गीबत का कफारा क्या, जिसकी गीबत की है जाकर उससे माफी मांगे। जरा देखिए हम, मजा आ जाना जब आपने अपनी दोस्त को जाके बताना मैंने तेरी गीबत की थी, कुछ सदका दीजिए उसकी तरफ से, फिर कफारात दीजिए। जुबान से गीबत हुई है ना, तब जुबान से आप कुछ काम करें नेकी का, कुछ ना कुछ अपने आप को सजा दें, शर्मिंदा भी हो, और उस पे फिर अपने आप को पकड़े। और इंशाल्लाह आपकी ये कोशिशें आपको मौत से पहले साफ सुथरा कर देंगी, क्योंकि मौत सबसे बड़ी नसीहत है, कफा बिल मौती वाइजा। जो मौत को याद रखेगा, अपने गलने सड़ने को याद रखेगा, मौत के आने से पहले तैयारी करेगा, अल्लाह ताला उसको ऐसी प्यारी मौत देगा कि जिसको मोमिन की मौत कहते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें दुनिया में ही, आज ही, जिंदगी में ही अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई सवाल आए आपके जहनों में, जो कोई बात आपने बाद में आके करनी है, अभी कर लें तो मेरी उस बात से दूसरों को भी फायदा हो जाएगा। देखिए, दिल हल्का करते करते दूसरे का दिल बोझल नहीं करते थे। आपके हाथ में 5 किलो का डब्बा है अगर, सोचिए ना जरा, तो वो दूसरे को पकड़ा देंगे तो बोझ उसके हाथ में चला जाएगा, ऐसी है ना। इन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है कि दिल हल्का करने के नाम पे गीबत करते हैं हम, और दिल हल्का नहीं होता, बोझल होता है। आप अपने शोहर के सामने दिल हल्का करते हैं और उसकी माँ की बुराइयां करते हैं, तो क्या बेटे का दिल माँ से खट्टा नहीं हो जाएगा। और फिर बेटा अगर अपनी माँ के साथ कुछ लफ्ज़ बोल देगा तो जो गुना वो करेगा, क्या आप उसके उस गुना में शामिल नहीं होंगी, होंगी ना। तो ज़रूरत है इस बात की कि हमें किसी भी मिलते जुलते खूबसूरत नाम के साथ धोखा नहीं खाना, मानिए ये गलत है। 4 स्टेप लिखिए आप, इल्मी, ईमानी, अखलाकी और समाजी। यानी आप इल्मी सतह पे भी आपकी ज़ात बड़ी खूबसूरत हो, आज इल्म तो बहुत है हमारे पास, अल्लाह की रहमत से इल्म का दौर दौर है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इल्म देने लेने वाले का ईमान का दर्जा भी बुलंद हो। ईमान है तो अखलाक अच्छा नहीं है, बंदों को देख नहीं सुखाते, और सोशल लाइफ तो हमारी दीन के साथ बिल्कुल ही कट जाती है। तो कोशिश कीजिए कि हर लिहाज से आप खूबसूरत हो। देखिए, मुकम्मल अल्लाह की ज़ात है, परफेक्शन सिर्फ उसको है। आपका मेरा काम अपनी कमियों बेशियों को दूर करना है, अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, आमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिम व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।